शांति। गुड इवनिंग। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हम सभी आत्माओं को शिव बाबा से एक बहुत भारी विशेष वर्षा मिली हुई है। आप सोचते होंगे वो कौन सा वर्षा मिला है हम सभी को शिव बाबा से, बहुत भारी वर्षा। आप तो सोचते होंगे कि स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग का वर्षा, वो तो है, वो तो भविष्य में हम सबको प्राप्त होगा ही, परंतु अभी अभी संगम युग में बाप टीचर सदगुरु के रूप में वो वर्षा हमें प्राप्त है। आप सोचिए वो कौन सा वर्षा है। वो यही वर्षा है जो बाप स्वयं अपना बन गया है। बाप ने स्वयं हमको अपना बना दिया और हमने बाप को अपना बना दिया, है ना, बनाया है ना। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है, हाथ उठाइए। सभी हाथ उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बाबा ने कहा ना, एक बारी आपसे कोई भी पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या जवाब देंगे, आप कहाँ रहते हो, बाप के दिल में ना। जिसने हमको अपना बना दिया, हम बाप के दिल में रहते हैं और बाप कहाँ रहता है, हमारे दिल में। तो माना हमने बाप को दिल में बिठा दिया, माना बाप को हमने अपने जीवन का साथी बना दिया। साथी बनाया है ना बाबा को। भगवान आपका साथी है, इसलिए तो गाते हैं ना, भगवान हमारा साथी है, वो हमारा संग रहते हैं, हम उसके संग रहते हैं। इसलिए हमको जीवन में कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का फिकर नहीं, कोई भी प्रकार की भय नहीं है, क्योंकि हमारा साथी कौन, भगवान। इसलिए गीत में गाते हैं ना, जिसके साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। साथी तो है बाबा, हमारे साथी है, वो साथ कभी छूट नहीं सकता, परंतु जीवन के साथी के साथ साथ निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। एक बारी दादी गुलजार ने क्लास कराया था, उन्होंने ये फर्क बताई थी कि बाबा को कंपेनियन बनाना, साथी बनाना एक बात है, परंतु बाबा के साथ कंबाइंड रहना दूसरी बात है। इसमें क्या फर्क है, बाबा के साथ रहना और बाबा में कंबाइंड रहना, अंतर है। उन्होंने कहा था कि जब हम बाबा के साथी होकर रहते हैं, हो सकता है बीच में कोई आ भी सके हमारे साथ को तोड़ने के लिए, परंतु जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहते हैं तो कोई भी हमको बीच में आ नहीं सकता। जो अभी हम कहते रहते हैं ना बाबा को कि माया आती है, माया को भगाना है, ये सब क्यों होता है। साथी तो है परंतु साथ निभाते निभाते कभी हमारा हाथ छूट जाता है। तो वास्तव में बाबा के साथ कंबाइंड रहना, तो जब हम ये अनुभव करना चालू कर देते हैं तो फिर अंतर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से समझें कि बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अर्थ क्या है, हम कैसे समझे कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर सकते। जैसे बाप और दादा कंबाइंड है ना, बाप और दादा को अलग ही नहीं कर सकते। जहां बाप है वहां दादा है, जहां दादा है वह बाप है। ऐसे ही विष्णु चतुर्भुज हम देखते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, वो अलग ही नहीं कर सकते। तो ऐसी आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहे और उसकी अनुभव करें, तभी हम कह सकते हैं कि हम बाप समान बन गए। जैसे क्षमा और परवाने का संबंध हम बताते हैं ना, तो जब परवाना क्षमा को देखता है और क्षमा में फिदा हो जाता है तो खुदा से जुदा नहीं होगा, वो क्षमा के समान ही बन जाते। अपना जो आइडेंटिटी था, अपना जो परिचय था, वो खत्म हो जाता है, उसमें लीन हो जाते। तो एक तो हम कह सकते हैं कि कंबाइंड रूप का अनुभव करना माना बाबा की याद में, बाबा की संबंध में लव लीन हो जाना, लीन हो जाना। इसलिए बाबा ने कहा ना, लव तो है परंतु अभी लव लीन की स्थिति का अनुभव नहीं किया है। इसलिए बीच बीच में संस्कार, स्वभाव, ये सब बातें जो आती है ना, इससे मालूम पड़ता है कि अभी हम लव लीन की स्थिति का अनुभव नहीं किया। भक्तों ने इसको लीन हो जाना कह दिया, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाते हैं, परंतु हम आत्मा बाबा की याद में, बाबा की प्यार में लीन हो जाते, अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता। जहां पर सागर और नदी समा जाते हैं ना, तो अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता है, कहां सागर है कहां नदी है। तो जब हम ऐसी अवस्था का अनुभव करें, लवलीन स्थिति, तब हम समझे कि हम बाबा और हम कंबाइन रहते हैं। और दूसरी बात, कंबाइन स्थिति का अनुभव माना कि जैसे बाबा की याद में समा जाना, क्योंकि अभी तीन प्रकार की याद होती है ना, एक होता है याद करना, दूसरा होता है याद आना, और तीसरा होता है याद सताना। तो जब हमारी याद सताने वाले के रूप में हो जाए, जब हम बाबा की याद में समा जाए, तब हम कह सकते हैं कि मैं और बाबा एकदम जैसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है, कंबाइंड है। जैसे ट्विन होता है ना, जुड़वे होते हैं, वो एक दो से अलग नहीं, दोनों साथ होते हैं। और तीसरा ये भी हम कह सकते हैं कि कंबाइंड स्वरूप माना ही लगन में मगन हो जाना। लगन है, अभी मग्न अवस्था का अनुभव हम कम करते हैं, क्योंकि लगन में विघ्न बहुत आते, उसके कारण मगन अवस्था नहीं होता। तो जब हम बाबा की लगन में मगन हो जाएं, बाबा के सिवाय और कुछ भी हमको दिखाई ना दे, तब हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ बाबा के साथ ही नहीं है, परंतु हम बाबा से कंबाइंड हैं। जैसे आप देखिए, अभी शुगर होता है और दूध होती है, जब आप शुगर दूध में डाल देते हैं तो वो शुगर दूध में समा जाता है, तो वो कंबाइन हो जाते हैं। सिर्फ जब दूध आप पिएंगे तो उसका स्वाद से मालूम पड़ेगा इसमें शक्कर है। तो जब हम बाप और हम साथ में रहते हैं, कंबाइंड हो जाते, तो सहज ही हमारे हर कर्म से, हमारे हर बोल से, हमारी हर दृष्टि से दूसरों को समझ में आता है कि अकेले नहीं है। ये देखने में आते हैं एक, परंतु टू इन वन। जैसे बाप दादा दोनों साथ हैं, ऐसे मैं आत्मा और बाबा साथ साथ का अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए बाबा कई बार हम लोगों को ये स्वमान दिया है, आप सदैव अपने आप को क्या समझो, शिव शक्ति। माना शिव बाबा भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, और शक्ति भी, आत्मा भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब शिव और शक्ति कंबाइंड है तो तभी ही हम स्थापना का कार्य में निमित्त बन सकते। तो इसलिए कभी भी हम अपने को अकेला नहीं समझना है, सिर्फ बाबा के साथ ही नहीं, क्योंकि अभी ये दुनिया एक मेला है ना। मेले में क्या होता है, भले बच्चा बाप का हाथ पकड़ के चलता है, पर चलते चलते हाथ छूट जाती है, तो फिर मेले में मजा लेने के बदले रोने में चला जाता है बच्चा। तो इसलिए सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं, कंबाइंड रहने का मतलब है हाथ और साथ, दोनों बाबा के साथ और कदम कदम के पीछे हम कदम रखते रहे, उसको कहते हैं कंबाइंड। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पीछे हमारा छाया ऑटोमेटिकली आता है ना, हम उसको बुलाते नहीं हैं, हमारे पीछे ऑटोमेटिकली आते हैं। तो ऐसे हम आत्मा जब तक किसी शरीर में है, ऐसे आत्मा हमारा परमात्मा के साथ हम कंबाइंड रहें। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि बाबा को अपना संसार बनाना है पहले तो, क्योंकि जब हम बाबा को अपना संसार बना देते हैं तो इस संसार से हमारी बुद्धि रूपी पाव उठ जाती है। तो हम पहले तो बाबा के संसार में रहना चालू करें, और फिर उसके बाद जब बाबा ही हमारा संसार बन जाता है, इस संसार से हमारी बुद्धि निकल जाती है, तो फिर हम बाबा को साथ में भी और बाबा का हाथ भी पकड़ के हम चल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं शिव बाबा तो बिंदु है, उसको कौन सा हाथ है, कैसे हम उसका हाथ पकड़े, कैसे हम उसका साथ रहें, क्योंकि कहा जाता है ना संग का रंग लगता है। तो अगर हम बाबा के साथ रहेंगे तो साथ का रंग भी ऑटोमेटिकली लगेगा ना। तो हाथ बाबा का, माना बाबा के हर श्रीमत को पालन करना। तो श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके बुद्धि के साथ हम कंबाइंड रहें। ऐसा कोई स्थूल में हम कोई शरीरदारी साथ में है ऐसा अनुभव नहीं होगा, परंतु कंबाइंड रूप में रहने से बुद्धि का साथ और बुद्धि की हाथ, बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ होने के कारण हम ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है वो कमजोर होता है, परंतु अगर ऐसे शक्तिशाली आत्मा का हाथ पकड़ के चलते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाती है, भले मैं कमजोर हूँ परंतु मेरा साथी शक्तिशाली है, इसलिए हमको कोई जीवन में डर नहीं। तो पहले तो हम बाबा के हाथ और साथ पकड़ करके चलने का अभ्यास करें। तो बीच बीच में मन मत पर चलना, परमत पर चलना, माना बाबा का हाथ हमारा छूट जाता है तो हम कंबाइंड कैसे रहेंगे। तो पहले एक तो हम बाबा को संसार बनाएं और दूसरा बाबा का हाथ और बाबा का साथ पकड़ करके चलें। तो फिर हम जो बाबा के प्यार का जो रीत निभाना है उसको हम निभा सकते हैं। तो कंबाइंड रहने का मतलब है हर एक संबंध के साथ हमारा जो जिम्मेवारी है उसको हम निभाते रहे। सिर्फ मुख से ऐसा नहीं कि बाबा हमको आपसे बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होता है? जिसके साथ प्यार होता है उसकी जो आशाएं है उसको हम पूर्ण करेंगे ना। तो कंबाइंड रहना माना सदैव दिल तख्त नशीन रहना। बाबा ने इस सीजन की मुरली में कई बार हम लोगों को याद दिलाया है कि बाबा ने इतना ऊंचा तख्त दिया है, तो कंबाइंड रूप में रहने वाली सदैव बाबा के दिल तख्त नशीन होने के कारण वो कभी भी बुद्धि रूपी पांव को इस पृथ्वी पर नहीं रखते, मिट्टी पर नहीं रखते। इसलिए उनको ऐसा ही अनुभव होता है हर एक काम हम तख्त पर बैठ करके ही कर रहे हैं, चलना, खाना, पीना, उठना, क्योंकि बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है ना, तो आपको और कहां जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो पहले तो हम ये स्पष्ट रीति से समझे कि कंबाइंड रूप में रहना किसको कहा जाता है। तो जब ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर हम उसकी अनुभूति भी प्रैक्टिकली कर सकते। तो मैंने प्रैक्टिकली ये अनुभव किया है कि जब हम बाबा और हम दोनों साथ में साथ हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं तो कोई भी कार्य हमारे सामने आता है तो परमात्मा कंबाइंड होने के कारण, परमात्मा कौन, सर्वशक्तिवान है ना, तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। तो जब हम ऐसे कार्य की रिजल्ट देखें तो समझ सकते हैं कि ये कार्य हमने नहीं किया परंतु बाबा ने ये कार्य करवाया। दूसरों को भी ऐसा लगेगा कि इस आत्मा में ये शक्ति नहीं थी परंतु इन्होंने परमात्मा को अपने साथ ऐसा मजबूत रखा है तभी ये कार्य हो सका। तो सबसे पहले अनुभूति ये होंगे कि कोई भी कार्य हमको मुश्किल नहीं लगेगा, कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। कितना भी बड़ा कार्य हो तो कंबाइंड रूप में रहने के कारण, परमात्मा की शक्ति होने के कारण वो कार्य सफल हो जाता है, आसान हो जाता है और संभव हो जाता है। और दूसरी अनुभूति प्रैक्टिकली हम ये कर सकते कि हमने बाबा की महिमा सुनी है ना, बाबा करण करावनहार है, परंतु प्रैक्टिकली अनुभव बाबा कैसे करण करावनहार है वो अनुभूति हम कंबाइंड रूप में रहने से कर सकते हैं। करने वाला और कराने वाला बाप है, वो अनुभव हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कंबाइंड रूप में रहते हैं ये जरूर स्मृति रहती है कि हम निमित्त है, हम ट्रस्टी है, तो संपूर्ण समर्पण बुद्धि होती है ना, तो उसके कारण हम अपना सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, अपने को निमित्त समझ करके बाबा को आगे रखा, बाबा ही करता है और करवाता है। तो इसलिए अपने को कोई भी प्रकार का बोझ, कोई भी प्रकार की चिंता, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठ सकता, कैसे, क्यों, कब, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। बाबा मुझे निमित्त बना करके कर रहा है, परंतु करने वाला और कराने वाला बाबा है। न सिर्फ ये अनुभव हमको होगा, परंतु हम जो कार्य करते हैं देखने वालों को भी ऐसा अनुभव होगा। जैसे हमको याद है जादी प्रकाशमणि जब भी अपना अनुभव सुनाती थी वो यही कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बाबा की अंगुली पकड़ के चलती हूँ, बाबा ही सब कुछ करता है और करवाता है। और ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने दादी के जीवन से अनुभव किया, इसलिए दादी को कभी भी कोई भी कार्य का भारीपन नहीं होता था, सदैव इतना लाइट रहते थे, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी। तो ये करण करावनहार बाप है, करता भी है और करवाता भी है। वो प्रैक्टिकली क्या अनुभव है वो हम कंबाइंड रूप से कर सकते हैं, तो उसमें हमको कोई भी प्रकार की भारीपन नहीं हो सकता। और तीसरा अनुभव, जब हम कंबाइंड रूप में रहते हैं तो आप सोचिए बाबा कौन है, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का भंडार। तो जब ऐसी महान शक्ति कंबाइंड है तो हम आत्मा को कितनी सकाश मिलती होंगी। अभी भी हम देखते हैं ना, जब बाप दादा दादी गुलसार के तन में आते हैं और जितना समय बाबा दादी के तन में रहते हैं और उसके बाद भी दादी को कितनी सकाश मिलती होंगी। तो ऐसे जब हम आत्माएं भी बाबा को आह्वान करते हुए बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रख करके कार्य करते हैं तो बहुत सकाश का अनुभव कर सकते हैं। सकाश माना विशेष लाइट की, शक्ति की किरणें जो हमारे कार्य को एकदम सहज कर देता है, स्पष्ट कर देता है। तो दूसरों को भी हमारे से ऐसा अनुभव होगा कि ये परमात्म शक्ति ये कार्य करा रहे हैं, ये साधारण शक्ति नहीं है, तो वो सकाश का अनुभव, क्योंकि सकाश एक ही भगवान दे सकता है। सकाश के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, गुण भी, शक्ति भी, सब कुछ है उसमें। तो जब हम ऐसे सकाश का अनुभव करते हैं तो अपने को एकदम बुद्धि क्लियर और क्लीन और दूरांदेशी, तो जैसे अपने को कोई भी कंफ्यूजन, हलचल नहीं होता है। तो जब हमें जीवन में ऐसे विशेष सकाश की अनुभूति हो तो तभी हम समझ सकते कि ये अपनी शक्ति नहीं है, ये बाबा की विशेष शक्ति काम कर रही है। और दूसरा ये भी हम अनुभव कर सकते जब कंबाइंड रूप में है बाबा के साथ शिव शक्ति है, तो हमारे सामने माया कोई भी सामना नहीं कर सकता, माया की डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। कि माया भी हमारे सामने आती है जब देखती है कि हम अकेले हैं, अकेले अकेले हम बहुत निराश होकर के बैठे हैं, तो माया एंटरटेन करने के लिए आते हैं, पूछताछ करने के लिए। जब भी हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, तो माया की ताकत ही नहीं हमको हिलाए। तभी तो बाबा मिसाल देते हैं ना अंगद की, हमारी स्थिति इतनी अचल, अडोल और स्थिर होंगी, माया हमको कभी हिला नहीं सकेंगे। तो अगर हम अभी तक भी फील करते हैं माया आती है, माना वहां पर कंबाइंड रूप की कुछ कमी है, साथी है बाबा परंतु कंबाइंड नहीं रहते, क्योंकि कंबाइंड माना निरंतर लगातार बाबा के साथ रहना। जैसे बाबा कहते ना, अभी हम बाबा के साथ प्यार है परंतु उसमें निरंतर नहीं है। अभी किसी से भी प्रश्न पूछेंगे ना, आपका बाबा के साथ प्यार है, तो कहेंगे सब है, परंतु जब प्रश्न पूछा जाता है निरंतर प्यार है, उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो कंबाइंड रूप माना शिव और शक्ति अलग ही नहीं हो सके, तो माया ऑटोमेटिकली माया का हार हो जाएगा, माया हमारे सामने सरेंडर हो जाएंगे, तो फिर हमको कोई भी बाबा के सामने फरियाद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाबा माया आती है क्या करें, माया आती ही तब है जब हम अकेले रहते, अगर हम कंबाइंड है तो माया हमारे सामना नहीं करेंगे परंतु हमारे आगे समर्पित हो जाएंगे। और दूसरा ये भी हम अनुभव कर सकते हैं, जब हम कंबाइंड रूप में रहते हैं तो हमारा रूप क्या होगा, अलंकारी रूप होगा। जब अलंकारी रूप होगा तो ऑटोमेटिकली हम संहारी बन सकते हैं, असुरों का संहार तब हम कर सकते हैं जब हम अलंकारी रूप में होंगे। माना बाबा के साथ कंबाइंड रहना माना अष्ट शक्तियों को धारण करना, क्योंकि अगर अष्ट शक्तियों में से एक भी शक्ति कम है तो हम कंबाइंड नहीं है। आज हम देखते हैं ना दुर्गा, दुर्गा की यादगार में आठों हाथों में आठ प्रकार के शस्त्र दिखाते हैं और उसके सामने असुरों का संहार भी दिखाते हैं। तो कंबाइंड माना सर्व शक्तियां हमारे साथ जैसे कंबाइंड रहें। तो अगर एक भी शक्ति कम है तो हमारा संहार हो जाएगा, हम असुरों का संहार नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम चेक करके देखते हैं ना कि कौन सी शक्ति हमारे में है कौन सी शक्ति हमारे में नहीं है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं, चलो सात शक्ति हमारे पास है, एक शक्ति कम है तो कोई हर्जा नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, वो कंबाइंड रूप की निशानी नहीं। जब हम सर्वशक्तिवान माना सर्व शक्तियां हमारे साथ समाई हुई हो तो शक्तिशाली स्थिति माया को हरा देंगे। तो इसलिए हमारे अंदर से कोई भी प्रकार की फरियाद या उलाना नहीं निकल सकता। और दूसरा, बाबा आजकल बार बार यही कहते हैं ना कि आपके जीवन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। वैसे मुख द्वारा हम ज्ञान देते हैं, ज्ञान वर्णन करते हैं, बाबा का परिचय बताते हैं, वो तो उससे भी आत्माओं को बाबा के समीप ला सकते हैं, परंतु साक्षात्कार मूर्ति बनना है, बाबा को साक्षात प्रत्यक्ष करना है, वो कंबाइंड रूप द्वारा ही होगा। इसलिए आजकल बाबा कहते ना अनुभव कराओ, मुख से ज्ञान तो सुनाते हैं परंतु दूसरों को अनुभव हो आपके साथी कौन है, आपके साथ आपके द्वारा कार्य कराने वाला कौन है। तो जब हम कंबाइंड इस प्रकार से रहते हैं तो हम सहज ही साक्षात और साक्षात्कार मूरत बन जाते, भले हमारा सूरत वही है हमारा शरीर वही है परंतु कंबाइंड रहने के कारण इस सूरत द्वारा बाबा की मूरत दूसरों को दिखाई दे, इसी सूरत द्वारा हम दूसरों को बाबा के साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। तो इसके लिए हमको अपने अंदर इतनी अच्छी तरह से बाबा की याद हमको पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम एक तो स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में, परंतु स्मृति स्वरूप नहीं बनते। जब तक आत्मिक स्मृति स्वरूप नहीं है, तब तक कंबाइंड स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी तक भी हम स्मृति और विस्मृति का खेल करते रहते, कभी हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, कभी आत्मिक स्मृति को भूल जाते। जब हम ये स्थिति को पक्का कर लेंगे, आत्मिक स्मृति हमारा लगातार बना रहे, तो ऑटोमेटिकली बाबा साथ का अनुभव हम सहज कर सकते। कई बार बाबा कहते हैं ना, मुरली में बच्चे बाबा को कंप्लेन करते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाते, परंतु वास्तव में बाबा की याद नहीं भूलती है, परंतु हम क्या भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूं ये भूल जाते। तो हमको ये कहना चाहिए कि मैं अपने आत्मा को भूल जाता हूं, बाबा की याद नहीं भूलती, क्योंकि जब तक आत्मा की याद है तब परमात्मा की याद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आप अपनी याद की यात्रा की क्वालिटी को बढ़ाइए, आप अपने संबंध बाबा के साथ जो बनाया है उसकी गहराई में चले जाएं, क्योंकि जब तक हम याद को शक्तिशाली नहीं बनाया है और सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप से नहीं किया है, तब तक हम वो नजदीक समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एक तो अपने आप के ऊपर अटेंशन, और दूसरा अपने बाबा के साथ जो अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी संबंध जो रखना चाहिए, उसका उसकी तरफ अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होगा, तो हमारे जीवन में तीन बातों की अविद्या होंगी, माना कोई भी बात के डर नहीं होगा, कोई भी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि बाबा जो कहते हैं ना कि बेफिक्र बादशाह बनो, तो वो अनुभव हम तब कर सकते जब हम बाबा के साथ कंबाइंड है। नो अभी तक भी हमको कोई भी कार्य करते हुए चिंता होती है, कोई संशय होता है, कोई फिकर लगता है, उसकी निशानी कि हम बाबा के साथ है पर कंबाइंड नहीं है। क्योंकि अगर कंबाइंड है तो बाबा सर्वशक्तिवान शक्तिशाली, वो शक्ति हमारे साथ है, तो हमको कोई चिंता नहीं। क्योंकि बाबा, कई बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं ना, विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विजयी आपके गले का हार है। वो तब हम कर सकते हैं अनुभव जब हमारे अंदर इतना निश्चय हो। अगर हमारे निश्चय में थोड़ा भी कमी होगा, तो हम वो विजय, जो निश्चित विजय है, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए, अगर हमको अंतिम समय के लिए अपनी तैयारी करनी है, तो कंबाइंड रूप में रहने का अनुभव हमको बढ़ाते जाए। तो कभी भी हम अपने को अकेला नहीं, क्योंकि अकेलेपन में डर रहता है, परंतु जब हम दो साथ में हैं, तो कभी कोई डर नहीं रहता। तो इसलिए ये स्वमान हम अपने आप को बार बार याद दिलाए, मैं कौन हूं, मैं शिव शक्ति हूं। नो, शक्ति आत्मा है और शिव हमारे साथ। ऐसा नहीं कि शिव हमारे अंदर है, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया ना, आत्मा ही परमात्मा है, परंतु नहीं, हम कंबाइंड है फिर भी हम अलग अलग है। वो परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा, आत्मा तो आत्मा ही रहेंगे, परंतु कंबाइंड रहने से उनकी जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो कार्य को सफल करने में मदद करता है। तो इसके लिए हम सिर्फ योग में नहीं, नो कई बार हम देखते हैं ना कि योग में जब हम बैठते हैं, चलो उसी समय हम अनुभव करते हैं कि बाबा और हम कंबाइंड है, परंतु प्रैक्टिकली जब कार्य हम करते हैं, दूसरों को भी हमारे से अनुभव हो। कई बार ऐसा मुश्किल कार्य हमारे सामने आता है तो लोग तो हमको देखते रहते हैं ना, परंतु जब वो देखते हैं कि ये कार्य करते हुए भी कितना डिटैच भी है और लविंग भी है, ये भी अनुभव होता है। कंबाइंड रहने से कार्य करते हुए प्यारा भी होंगे और कार्य करने में न्यारा भी होंगे, क्योंकि ये भगवान की एक विशेषता है। भगवान सबसे प्यारा भी है सबके लिए और सबसे न्यारा भी। तो हम भी कर्म करते हुए अगर कंबाइंड स्वरूप में रह करके करते हैं तो हम कार्य की क्वालिटी भी अच्छी रहेंगी और कार्य को भी हम पूरा संपन्न करके छोड़ेंगे और कार्य की जो एक्यूरेसी है, ये विशेषता है कर्म में। जब हम कंबाइंड रहते हैं हमारे कर्म में तीन बातें स्पष्ट दिखाई देती। एक तो कार्य में सुंदरता, जैसे भगवद गीता में लिखा है ना, योग कर्मसु कौशलम, माना योग से कर्म करने से वो कर्म कला बन जाती है। तो हमारी कर्म में वो कुशलता दिखाई देगा, वो कंबाइंड रूप की निशानी उसकी सुंदरता और उसकी क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी, ये तीनों बातें जब हमारे कर्म में दिखाई देगा तब लोगों को समझ में आएगा कि इनका किसके साथ संबंध रखते हुए ये कार्य कर रहे हैं। नहीं, कर्म योग हम कहते हैं ना, तो वास्तव में कर्म योग का मतलब क्या है? योग में रह करके कर्म करना। जैसे मन बुद्धि आत्मा का अंग है, वो नेचुरली बाबा में लगा रहे, तो जब हम कंबाइंड रह करके कोई भी कार्य करते हैं तो प्रैक्टिकली वो कार्य संपन्न होने तक उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है कई बार दादी जानकी हम लोगों को बताते थे कि कैसे हमको मालूम है कि हम बाबा की याद से ये कर्म कर रहे हैं। नो कर्म करते समय तो सबको बहुत उमंग उत्साह होता है ना, चालू करते हैं, फिर आधा में उमंग उत्साह कम हो जाता है, वो कार्य आधे में छोड़ करके दूसरा कार्य करने चले जाते हैं। परंतु जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और कर्म योगी हैं, करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, तो वो कार्य संपन्न होने तक उस कार्य को हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, हमने ये भी प्रैक्टिकली देखा है कि जितना समय हम लेते हैं वो कार्य संपन्न करने के लिए, बाबा के साथ होने के कारण वो कार्य आधे समय में संपन्न हो जाता है ना। कई बार हम सोचते हैं ना, हमको टाइम नहीं है कार्य करने में, परंतु बाबा साथ है, बाबा कंबाइंड है, तो उसकी शक्ति वो कार्य को आधे समय में संपन्न कर देता है, फिर भी हमको समय बच जाता है। परंतु कई बार हम लोग ज्यादा सोचते हैं कर्म करने के पहले, सोचने में आधा समय चला जाता है। तो मुझे याद है एक बारी दादी ने कहा था कि मैं कैसे समझ सकती हूँ बाबा कंबाइंड है, बाबा करवाता है। तो हमको कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है तो अगर हम दिल से हाँ कहते हैं और दिल से हाँ कहकर के करते हैं, उसमें सफलता मिलती है। अगर हम कई बार हाँ कहते हैं, कई बार ना कह देते हैं, माना कि हम समझते मुझे करना है, उसी समय बाबा कहाँ गया? गुम हो गया ना। अगर बाबा ही कंबाइंड है, करण करावनहार बाबा है, तो हम कभी ना नहीं कहेंगे, कभी हाँ नहीं कहेंगे, सदैव हाँ कहते रहेंगे, क्योंकि हम तो नहीं करते ना, करने वाला और कराने वाला बाबा है। तो हम ये मैं, मेरा, ये जो कई बार विघ्न आता है ना सेवा में, संबंध में, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कंबाइंड रहते हैं ना वो सदैव जहां मैं आता है वहां आत्मा याद करते, जहां मेरा याद आता है वहां बाबा याद आता है, तो ऑटोमेटिकली ये दो शब्द खत्म हो जाते, तो बुद्धि बेहद में चली जाती। तो कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले कभी भी कोई भी बातों के हद में नहीं फंसेंगे, क्योंकि बाबा बेहद है ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी बेहद की दिल होंगी, बेहद की बुद्धि होंगी, तो उसके लिए वो सारी दुनिया को अपना परिवार समझ करके सारी दुनिया को अपने में समा सकते हैं। तो विश्व कल्याणकारी बनना है नो, विश्व का परिवर्तन करना है, उसके लिए तो हमको कल्याणकारी बाबा के साथ कंबाइन रह करके काम करना है। तो इसलिए कोई भी बात असंभव नहीं हो सकता। तो छोटे छोटे कभी कभी विघ्न आता है ना सेवा में, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये जो लिमिटेशंस, हदें आती हैं, इससे मालूम पड़ता है कि हम बाबा का साथ भी छोड़ दिया और बाबा हमारे से कंबाइंड नहीं है। तो जब बाबा साथ हैं और बाबा हमारे कंबाइंड रूप में हैं, तो हम बेहद में चली जाएंगे, हमारी दृष्टि दूरांदेशी हो जाएंगे, तो हम सभी आत्माओं को अपने दिल में समा सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाप समान बनने के लिए बहुत सहज हो जाता है ना? जिसके साथ कंबाइंड रहेंगे रात दिन, उसके जैसा ही बन जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हमको उसका संग का रंग लगेगा। तो कौन सा रंग, जो सदैव कंबाइंड रहते हैं उसका रंग क्या होगा, आप बताइए। संग का रंग तो लगता है ना, अगर हम सदैव कंबाइंड रहते हैं बाबा के साथ तो उसका रंग क्या होगा आत्मा को? और कोई रंग नहीं, लाल, सुनहरा, ब्लू, ग्रीन नहीं, परंतु वास्तव में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। तो क्योंकि बाबा है ही रूहानी बाप, तो जब हम उनके साथ कंबाइन रहते हैं तो हमारी जीवन में वो रूहानियत बढ़ती जाती है। तो जब हमारे अंदर वो रूहानियत आ जाती तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे सामने आएंगे, जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, उनको रूहानी राहत मिलती रहेंगी। तो अगर रूहानियत जीवन में लाना है तो हम अपने साथ बाबा के हाथ और साथ पकड़ करके चले, कुछ भी हो जाए, बुद्धि का साथ बाबा के साथ और श्रीमत रूपी हाथ, अगर ये दोनों हमारा साथ साथ है तो हमारा कदम बाबा के कदम के पीछे चलेगा। आजकल बाबा कदम सुना रहे ना, साकार बाबा की, कौन सी कदम पर हमको कदम रखना है ताकि हम बाबा के समान बन सकें। तो कंबाइंड रूप में रहने से हम थोड़े समय में, भले लास्ट में भी आए हैं, परंतु हम फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, बीच में किसी को आने नहीं दर। कहते हैं ना, जब तीसरा कोई बीच में आ जाता है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तो जब बाबा भी देखता है कि बाबा और आत्मा के बीच में दूसरा कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई आकर्षण है, तो बाबा निकल जाता है। तो इसके लिए हमको बाबा को अगर अपने साथी बनाना है, बाबा को कंबाइंड रूप में रहना है, तो बुद्धि की पूरा समर्पण, बाकी तो हम अर्पण कर देते हैं, अर्पण और समर्पण में भी अंतर है। भक्ति मार्ग में भी हम अर्पण करते थे, परंतु यहाँ पर समर्पण, सर्व अर्पण ना, बुद्धि सहित, जैसे आज बाबा ने कहा, तो हम बुद्धि बाबा के श्रीमत के अनुसार अपनी बुद्धि को हम चला सकते। तो ऐसे अगर हम इस वारी मधुबन से अनुभव करके जाएं, सिर्फ थियोरी न रहे, कि बाबा के कंबाइंड क्या होता है, परंतु हम बाबा के साथ साथ ऐसे रहे जैसे कि शरीर और आत्मा अलग नहीं हो सकता। एक सेकेंड में बाबा हमारे से दूर नहीं, ऐसे हम बाबा के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा की जो भी मिल्कियत है, बाबा की जो भी वर्षा है, वो अपना सहज ही बन जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि भविष्य में तो हमको विश्व की बादशाही मिलेंगी ही, परंतु संगम युग में जो हमको ये वर्षा मिला है कि बाबा खुद ही अपना बन गया है, और बाबा हमको ऑफर भी कर रहा है कि हम आपके साथ सदैव रहेंगे। क्या वायदा किया है बाबा ने? साथ रहेंगे, साथ घर जाएंगे, साथ मरेंगे, साथ। तो क्यों नहीं उसके साथ का हम फायदा लें? तो बीच में कोई भी अगर है, कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो आप चेक करके देखिए। तो बाबा आने के पहले, अभी तो 2 दिन बाकी है ना, तो वो बीच में से जो है वो निकाल दें, तो फिर हमको बाबा के वो सकाश का अनुभव हम सहज ही कर सकते हैं। नो, बाबा की सकाश से कई फायदा हो जाता है। आज सूरज की रोशनी देखिए, सूरज की सकाश से कितनी फायदे हैं। तो अगर सूरज से भी बलवान, सर्वशक्तिवान बाबा का सकाश हमको मिल जाता तो हमारे जीवन में जो कुछ कमी है वो सब खत्म हो जाता। तो ये जो आज हम कमजोरी भाषा बोलते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम सब सहज ही बाप समान बन करके पहले तो हम बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे, और हमारे से दूसरों को बाबा का साक्षात्कार सहज ही हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर, टीचर शोज स्टूडेंट। तो हम किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं, और किसकी हम फॉलोअर्स हैं, वो हम अपने सूरत से उसकी मूरत को हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे इस बारी हम मधुबन में पुरुषार्थ करके ऐसे अनुभवों को हम प्राप्त करके जाएं। तो जब आप अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो हरेक को लगे कि आप अकेले नहीं हो, आप बहुत बड़ी शक्ति के साथ हो। तो आपकी प्रेजेंस से ही दूसरों को शक्ति का अनुभव हो जाए। तो हम तो आशा रखते हैं हम सभी मिल करके ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा को साथी बनाएं, बाबा को अपने कंबाइंड रूप में रखें, तो माया को हम सदैव के लिए छुट्टी दे दें। तो फिर हम सब मिल करके फिर से जो हम आशा रखते हैं ना कि बाबा का नाम बाला हो जाए, वो सहज हो जाएगा। तो यही लक्ष्य हम रखें कि अभी आपको 2-3 दिन जब भी मधुबन में रहने का चांस है, तो यहाँ और कोई कारोबार तो है नहीं, तो एक एक घंटे में हम चेक करके देखें कि क्या हम बाबा के साथ और हाथ हैं, और हम बाबा करण करावन हार करा रहा है वो अनुभव हम कर रहे हैं। कोई भी बात मुश्किल लगे फौरन हम चेक करें, क्यों? बाबा साथ है तो कोई भी मुश्किल नहीं। तो ऐसे शिव शक्ति, भले पांडव है या शक्ति है, हम सब आत्मा शिव शक्ति हैं। तो ऐसे शिव और शक्ति अलग ना हो, हम सदैव कंबाइन रहे, उसका हम ध्यान रखते हुए अगर हम हर कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जाने के पहले आपके अंदर बाबा की जो भी शक्तियां है, गुण हैं, आप अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, फिर जहां जाएंगे उन आत्मों को आप बांट सकते हैं। ओम शांति। तो अभी इसी स्मृति से हम 3 मिनट पावरफुल बाबा की याद में बैठेंगे कि इसी स्वमान से कि हम आत्मा शिव शक्ति हैं और शिव की शक्तियों की अनुभूति हम करें। Mama, mama, daddy, daddy, daddy.
Yeah.